आसान है एक मर्द की तलाश जो तुम्हें प्यार करे, बस तुम ईमानदार रहो कि एक औरत के रूप में तुम चाहती क्या हो। उसे सब सौंप दो, वो सब सौंप दो जो तुम्हें औरत बनाती है। बड़े बालों की खुशबू, स्तनों के बीच पसीने की कस्तूरी और तुम्हारी वो सब स्त्री भूख।
कमला दास ने जब ये कविता लिखी थी तो उसने परंपरागत पुरुष समाज को झकझोर कर रख दिया था और उसने सोचा था कि कोई कवियत्री अपनी कविताओं में इतनी बेबाक और ईमानदार कैसे हो सकती है। भारतीय साहित्य में अगर कमला दास जैसी लेखिकाएं नहीं होती तो आधुनिक भारतीय लेखन की वो तस्वीर उभर कर सामने नहीं आती जिस पर आज का समूचा स्त्री विमर्श गर्व करता है। एक साधारण गृहस्थ महिला जब अपनी भावनाओं को अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ कागज पर उतारती है तो साहित्य की दुनिया में तहलका मच जाता है। कमला दास के साथ ऐसा ही हुआ था। उनका जन्म आजादी से 13 साल पहले 1934 में केरल के एक साहित्यिक परिवार में हुआ था। 6 वर्ष की आयु से ही उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। एक बार उन्होंने बताया था कि जब कोलकाता के एक स्कूल में उन्होंने एक कविता लिखी और उस स्कूल में गवर्नर की पत्नी आई तो प्रिंसिपल ने वो कविता उनसे न पढ़वाकर एक अंग्रेज लड़की शर्ली से पढ़वाई।
There was the governor's wife, Mavis Casey. I still remember the name, coming to visit us, our school.
एक बार गवर्नर की पत्नी मैविस कैसी मेहमान के तौर पर हमारे स्कूल आईं। मैंने इस मौके पर एक कविता लिखी, लेकिन हमारी प्रिंसिपल ने वो कविता एक अंग्रेज लड़की शर्ली से पढ़वाई। इसके बाद गवर्नर की पत्नी ने शर्ली को अपनी गोद में बैठाकर कहा कि तुम कितनी अच्छी कविता लिखती हो। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी वो सब सुन रही थी। इतना ही नहीं, गवर्नर की पत्नी ने शर्ली के दोनों गालों पर चुंबन लिए और उनकी देखा देखी हमारी प्रिंसिपल ने भी मेरी आंखों के सामने ही उसको चूम लिया। पिछले साल मैंने लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में अपनी कविताओं का पाठ किया। 8 बजे से 11 बजे तक मैं मंच पर थी। जब मैं स्टेज से नीचे उतरी तो कई अंग्रेजों ने आगे बढ़कर मेरे गालों को चूम लिया। मेरे मन में आया कि शर्ली, मैंने अपना बदला ले लिया।
मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह रिजर्व बैंक के एक अधिकारी माधव दास से हो गया। दिलचस्प बात ये कि निजी जिंदगी में कमला दास की छवि एक परंपरागत महिला के रूप में उभर कर आती है, जबकि उनकी आत्मकथा इसका ठीक विपरीत रूप प्रस्तुत करती है। उनके छोटे बेटे जयसूर्या दास, जो इस समय पुणे में रहते हैं, बताते हैं।
काफी रेगुलर नॉर्मल इंसान था, नथिंग स्पेशल इन क्लोथ्स के एरिना में। शी वाज मोस्ट ऑफन ड्रेस्ड इन साड़ीज ओनली, आई थिंक 90% ऑफ हर लाइफ। शी लव्ड अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, काफी गोल्ड बैंगल्स पहनते थे, 36 बैंगल पहनती थी वो, 18 इन ईच हैंड। एंड शी वाज अ वेरी सेंसिटिव इमोशनल पर्सन, काफी सेंसिटिव थे।
मैंने उनके बड़े बेटे माधव नलपत, जो कि इस समय साप्ताहिक अखबार संडे गार्डियन के संपादकीय निदेशक हैं, से पूछा कि क्या कमला दास आपके लिए एक कड़ी माँ थी?
बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थी। उदाहरण से मैं बोल दूंगा कि एक बार जब मैं 12-13 था तो मैं बोल दिया कि मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, तो माँ ने एक पैकेट मुझे दे दिया, तो मैं 4-5 सिगरेट तो पी लिया। उसके बाद मैं एक सिगरेट भी तो टच नहीं किया। यदि माँ बोलते थे नहीं पीना है, बहुत बुरा है, नहीं करना है, तो मेरे ख्याल से मैं तो रुचि होगा और मेरे ख्याल से मैं तो एक सिगरेट एडिक्ट हो सकता था। ये क्या कह दिया कि देखो, आप तो एक इंडिविजुअल है, आपको एक हक है ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप एक्सपेरिमेंट कर दीजिए।
अपने इन्हीं बेटे माधव यानी मोनू के किशोर प्रेम का जिक्र कमला दास अपनी आत्मकथा माई स्टोरी में करती है। 15 साल के माधव को एक जर्मन लड़की अना से इश्क हो गया था और वो दोनों घंटों अपने घर की छत पर फ्रेंच साहित्य और मार्क्स के बारे में बातें किया करते थे। कमला दास लिखती हैं कि इस इश्क ने मेरे बेटे को पूरा बौद्धिक बना दिया था। मैंने माधव नलपत से पूछा कि जब आपकी माँ को इसका पता चला तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी?
मेरे माता जी का रिएक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल था, एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की था और हम तो पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे, फैसिज्म क्या था, वॉर क्या था, इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट क्या था, ये सब बड़ा बड़ा सीरियस डिस्कशन हम करते थे। हम सच में लव रोमांस का कोई डिस्कशन नहीं थे।
पर एक बार वो कलकत्ता गई तो आप उसके साथ कलकत्ता जाने को तैयार थे, और वो आपने अपने सारे कॉमिक बेचे वहाँ जाने।
पिताजी ने कह दिया कि क्या तुम एक लड़की को देखने के लिए कलकत्ता जाएंगे, मैं कभी आपको टिकट नहीं खरीदेंगे। तो और क्या रास्ता था वो टिकट खरीदने के लिए, कॉमिक सब बेच कर पैसा मिल गया और एक टिकट खरीद लिया, थर्ड क्लास टिकट। मैं तो एक ब्लैंकेट भी नहीं लिया था, तो बहुत ठंड था, तो बोल दिया बीड़ी ले लो। तो मेरे वो तो अभी मैं ले लिया।
कमला दास न सिर्फ खुद एक बड़ी कवि थी, वो कई उभरते हुए कवियों को प्रोत्साहित भी किया करती थी। उनमें से एक थे रणधीर खरे।
करीबन 75 में हम कलकत्ता से मुंबई पहुंच गए थे, तो उस वक्त हम तो जवान थे, हम कवि थे, किंतु कोई हमारे जो कविता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कई कवि से मिले तो हमको हाँ हाँ ठीक है आप जो लिख रहे हैं ठीक है, किंतु अब हमारे समय नहीं है अभी। तो हम निस्मिजी के हिसाब से भी मिले थे उस वक्त, वो बड़े आदमी थे, तो बोला हाँ हाँ ठीक है, तो इनको आप बदल दीजिए, ये लाइन बदल दीजिए, वो शब्द बदल दीजिए। तो ये बहुत हमको बहुत तकलीफ हो रहे थे, क्योंकि हम नौजवान थे और हम कविता लिख रहे थे, हम हर अपने दिल और दिमाग में हमारे कविता बहुत अच्छा। तो किसी ने बताया हमसे, अरे आप ये कमला दास से जाकर मिल लीजिए। अरे वो तो बहुत बड़े बड़े नाम के हैं, अभी वो हमसे क्यों मिलेगी। बोले नहीं ये लीजिए, ये उनका नंबर है, आप उनको बस फोन कर दीजिए और वो आपसे मिलेगी। तो मैंने फोन किया, वो खुद उठाई फोन, बोला आ जाओ घर पे आ जाओ। बोले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितने कविता लेके आए। हम बोले हम तो 40 कविता लेके आए। पढ़ना चाहते हो ना, 40 पढ़ो, शुरू से पढ़ो। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, सब 40 कविता पढ़े और वो बैठ के सुनी पूरा शुरू से अंत तक। हम बोले तो अभी तो आप हमें बताइए कविता कैसे लगे। बोले हमारा बोलने से क्या फायदा है, आपको कैसे लगा अपना कविता। हम बोला हम ऐसा सोचता हूँ कि कविता बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये शनिचर सब कवि यहाँ मिलते हैं, हम लोग अपना यहाँ पे स्वारी करते हैं, जैसे सम्मेलन होते हैं, आप आ जाइए, ये 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 और ये कविता लेकर आइए। तब से मैं बताऊं, इतने खुले दिल से, खुले दिमाग से उन्होंने हमको मेंटोर किए।
उस जमाने में कमला दास के मुंबई स्थित घर में एक साप्ताहिक गोष्ठी बहुतंत्रिका होती थी, जिसमें शहर के नामी गिरामी लेखक, कवि, नर्तक और थिएटर से जुड़े लोग एकत्रित होते थे।
उनके बड़े से कमरे थे, एक कोने में वो चुपचाप से वो बैठी रहती थी, और वो कमरे बिल्कुल लोगों से भरा हुआ था, और दूसरे कोने में कवि को बिठा देते थे। और बहुत सारे लोग जो अभी सब कवि जो बन के आ गए, अभी निस्मय जेकल साहब भी पहुंच गए थे, अब प्रीतिश नंदी थे वो भी पहुंच गए थे, आ जाते, कोई डांसर आते थे, कोई म्यूजिशियंस आते थे, बहुत अलग अलग टाइप के लोग आते थे। वहाँ झगड़ा भी हो जाते थे पोएट्स के बीच में, आपस में 3-4 बजे से शुरू होते थे, रात तक चलते थे, उनके खाना पीना चाय वाय जो कुछ भी है वो चलते रहते थे, कोई ना मेंबरशिप फी था ना कुछ था, और सब जितने लोग वहीं पे आते थे उनको लगते थे मैं घर आ रहा हूँ।
कमला दास को कहानियां और कविताएं लिखने के अलावा पेंटिंग करने का भी शौक था, वो अक्सर शास्त्रीय संगीत भी सुना करती थी।
शी लव क्लासिकल म्यूजिक, उनका जो ऑल टाइम फेवरेट था कुमार गंधर्व, शी यूज्ड टू लाइक लिसनिंग टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान, शी यूज्ड टू लाइक टू लिसन टू एम एस सुब्बलक्ष्मी, काफी शौक थे। एंड देयर यूज्ड टू बी वंडरफुल पीपल लाइक आई स्टिल रिमेम्बर हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी, हु यूज्ड टू कम एंड सिंग एंड जोक अराउंड, वो तो हर हफ्ता घर पे आते थे, एंड सच वंडरफुल पीपल दैट मेड आवर लाइफ्स। आई थिंक वी वर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव grown up in such an environment, it was amazing.
एक बार कमला दास ने लिखा था कि पूरी ईमानदारी के साथ आत्मकथा लिखना और कुछ भी नहीं छिपाना एक प्रकार से एक एक कर अपने कपड़े उतारने जैसा काम है, यानी स्ट्रिप टीज।
मैं सबसे पहले अपने कपड़े और गहने उतार कर रख दूंगी, फिर मेरी इच्छा है कि मैं इस हल्की भूरी त्वचा के छिलके उतार कर रख दूं, और फिर अपनी अस्थियों को चकना चूर कर डालूं। आखिर में आप मेरी बेघर, अनाथ और बहुत ही सुंदर उस आत्मा को देख सकेंगे जो अस्थियों और मांस मज्जा के कहीं बहुत गहरे भीतर तक धंसी हुई है।
कुछ इसी तरह की भावनाओं को कमलादास ने कविता का भी रूप दिया था।
जब कभी निराशा की नौका तुम्हें ठेल कर अंधेरे कगारों तक ले जाती है, तो उन कगारों पर तैनात पहरेदार पहले तो तुम्हें निर्वसन होने का आदेश देते हैं। तुम कपड़े उतार देते हो तो वो कहते हैं अपना मांस भी उघाड़ो, और तुम त्वचा के साथ अपना मांस भी उघाड़ देते हो। फिर वो कहते हैं कि हड्डियां तक उघाड़ दो, और तब तुम अपना मांस नोच नोच फेंकने लगते हो, जब तक कि हड्डियां पूरी तरह नंगी नहीं हो जाती। उन्माद के इस देश का तो एकमात्र नियम है उन्मुक्तता, और वो उन्मुक्त हो न केवल तुम्हारा शरीर बल्कि आत्मा तक कुतर कुतर खा डालते हैं।
1999 में अचानक धर्मांतरण कर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में अभिव्यक्ति की आजादी की मांग को लेकर कट्टर मुल्लाओं से भी उनकी ठनी। जब उनकी आत्मकथा पर बहुत बवाल हुआ तो बाद में उन्होंने उसे फिक्शन घोषित कर दिया। मैंने कमला दास को नजदीक से जानने वाले रणधीर खरे से पूछा कि आपकी नजर में माई स्टोरी एक वास्तविक कहानी थी या कल्पना की उड़ान।
हम वाडिया कॉलेज में एमए क्लासेस में उनका कविता मैंने पढ़ाया था। एमए स्टूडेंट्स का पहले प्रश्न ये था, हम तो कविता पढ़ रहे थे किंतु उनका जो कथा जो है सब लिखे हुए वो तो सब लोग बोला ये सच है कि झूठ है कि क्या है। तो मैंने उनको सबको अपना घर में ले गए थे, 40 बच्चे को। तो मैंने बोला देखिए अभी कमला जयसूर्या उनके बेटे के घर में ठहरा है पुणे में, आपको जो कुछ भी प्रश्न पूछना है पूछिए हमसे, हम उनको अभी फोन करके पूछता हूँ। ऐसे कौन से स्टूडेंट को क्या ऐसा मौका मिलेंगे साहब। पहले प्रश्न ये था कि ये सच था कि फैंटेसी था। उनके जवाब था कि जो पूरा जो लिटरेचर है जो भी हम लोग क्रिएटिव करते हैं वो सब एक्ट ऑफ क्रिएशन है, और कहाँ पे रियलिटी आते कहाँ पे फैंटेसी आते उसका किसी का मतलब नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमको टच हो रहा है, ये असली लग रहा है, ये हमको इंस्पायर कर रहा है, ये हमको शॉक कर रहा है, बस यही मतलब है। बट हाउ मच इज रियल हाउ मच इज अनरियल इज नोबडीज बिजनेस, वो बोला है।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।